की जाए, नवाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जाए, प्रेम से गौर से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जाए, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जाए, गंगा माई की जाए, यमुना माई की जाए, वृंद देवी तुलसी महारानी की जाए, हरि नाम संकीर्तन की जाए, समवेत भक्त वृंद की जाए, ऑल ग्लोरी सुदर्शन बल डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरी सुदर्शन बल डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरी श्री गुरु एंड गौरंग। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 9 श्लोक संख्या 36। अध्याय का शीर्षक है भक्ति का कल्पवृक्ष। अतेव आमी आज्ञा दिलु सबा कारे, जहां तहां प्रेम फल देह जारे तारे। अतेव आमी आज्ञा दिलु सबा कारे, जहां तहां प्रेम फल देह जारे तारे। अतेव आमी आज्ञा दिलु सबा कारे, जहां तहां प्रेम फल देह जारे तारे। बोलिए अतेव आमी। अच्छा आप बोलना चाहते हैं, बोली बोली सॉरी मैं ध्यान दे बोले वहां से बोली। और एक साथ बोल लीजिए आप, सबकी इच्छा पूरी हो जाए। बोली बोली हरे कृष्ण। अतेव अतेव आमी मैं आज्ञा आज्ञा दिलो देता हूं सभाकारे हरे को, जहां जहां कहां तहां हरे हर जगह प्रेम फल भगवत प्रेम का फल देह बांटो जारे किसी को भी तारे। प्रत्येक को अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अतएव मैं इस ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को आज्ञा देता हूं कि वह इस कृष्ण भामरा अमृत आंदोलन को स्वीकार करे और इसे सर्वत्र वितरित करे। दोराई। अतएव मैं इस ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को आज्ञा देता हूं कि वह इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को स्वीकार करे और इसे सर्वत्र वितरित करे। तात्पर्य इस संदर्भ में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर द्वारा रचित एक गीत है। एनेची औषधि माया नशीबारो लागी हरि नाम महामंत्रा लाओ तुम्ही मागी भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया से हरि नाम मंत्रा लोईलो मागिया।
श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपाल माया के उस मोह को दूर करने के लिए किया, जिसके कारण इस भौतिक जगत का हर व्यक्ति अपने आप को पदार्थ से उत्पन्न हुआ मानता है और इसलिए शरीर के प्रति अपने अनेक कर्तव्यों को निभाता है। वास्तव में जीव शरीर नहीं अपितु आत्मा है, उसे ज्ञान तथा आनंद से सदैव पूर्ण होने की आध्यात्मिक आवश्यकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह अपने आप को शरीर मान लेता है, जिससे कभी वह अपने आप को मनुष्य, कभी पशु, कभी वृक्ष, कभी जलचर तो कभी देवता इत्यादि के रूप में पाता है। इस तरह हर शरीर बदलने के साथ ही वह अलग प्रकार की चेतना विकसित करते हुए अलग प्रकार से के कार्य करता है और इस तरह इस भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसता जाता है और लगातार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। माया के वशीभूत होकर वह भूत या भविष्य पर विचार नहीं करता, केवल वर्तमान के अल्पकालिक जीवन से संतुष्ट रहता है। इस माया मोह को दूर करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन लाए हैं और वे हर एक से प्रार्थना करते हैं कि लोग इसे अंगीकार करके वितरित करें। जो व्यक्ति सचमुच ही श्रील भक्तिनो ठाकुर का अनुयायी है, उसे चैतन्य महाप्रभु के इस निवेदन को तुरंत स्वीकार करते हुए उनके चरण कमलों में नमस्कार करके हरे कृष्ण महामंत्र की याचना करनी चाहिए। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि महाप्रभु से हरे कृष्ण महामंत्र की याचना कर सके तो उसका जीवन सफल हो जाए।
ओम अज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
अतएव आमी आज्ञा दिलु सभा कारे जहां तहां प्रेम फल देह जारे तारे। अतः मैं इस ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को आज्ञा देता हूं कि वह इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को स्वीकार करे और इसे सर्वत्र वितरित करे। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि हम सब कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को स्वीकार करें। तो ये आज्ञा का मतलब क्या होता है? इस आज्ञा में शक्ति भी है, चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा शक्ति है। तो उस आज्ञा को स्वीकार करने का मतलब है उस कृपा शक्ति को स्वीकार करना, क्योंकि कृपा शक्ति को जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप किसी के ऊपर कृपा कर नहीं सकते। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का मतलब जब भी गुरु कृष्ण से हमें आज्ञा मिलती है, जैसे हम महाप्रभु आज्ञा दे रहे हैं, तो उस आज्ञा में उनकी कृपा शक्ति भी है और उस कृपा शक्ति के कारण ही हम लोग प्रचार कर पाते। प्रचार करने के लिए वो आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई है हम सभी भक्तों को, श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से। तो ये है वास्तव में परंपरा का संदेश, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषियो विदुः। तो दिव्य ज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ, लेकिन उस दिव्य ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभीष्ट है उसको पूरा करना है। जैसे श्री रूप गोस्वामी के लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। महाप्रभु का मनोभीष्ट जो है उन्होंने पूरे भूतल में स्थापित किया श्री रूप गोस्वामी ने श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। और वो कैसे स्थापित किया है? इन ग्रंथों के वितरण के माध्यम से। स्थापित तो कैसे करेंगे, स्थापित करने के लिए कुछ होना चाहिए, तो वो ग्रंथों के माध्यम से स्थापित हुआ है। तो इस ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। ग्रंथों का वितरण का मतलब ज्ञान का वितरण, और ज्ञान का वितरण मतलब चैतन्य महाप्रभु की कृपा शक्ति का वितरण। तो हमें उसका निमित्त बनना होगा, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, कि अर्जुन तुम निमित्त मात्र बनो, आप पांच पांडवों के अतिरिक्त सबके सब मारे जाएंगे। महाभारत में विजय किसकी होनी है? पांडवों की होनी है, ये पहले से भगवान कृष्ण ने घोषणा कर दी। तो अर्जुन पूछ सकते थे फिर हम क्यों युद्ध करें? एक और कारण हो सकता था उनके युद्ध ना करने का, कि युद्ध तो हम जीत ही गए हैं, तो फिर युद्ध करने की आवश्यकता क्या है, क्यों इतना खून खराबा करें? गुड क्वेश्चन। इसलिए कि भगवान कृष्ण अर्जुन को श्रेय देना चाहते हैं, युद्ध करके भगवान चाहते हैं अर्जुन को श्रेय मिले, भगवान भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद से पूछा कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से बाहर क्यों नहीं गए प्रचार के लिए, केप कॉमरिन से बाहर नहीं गए श्री चैतन्य महाप्रभु, उसका क्या कारण है? तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि वो मुझे कृपा देना चाहते थे, मुझे एक क्रेडिट देना चाहते थे, इस वजह से नहीं गए। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर ली श्रील प्रभुपाद जी ने वो कार्य करके, यानी कि वो भविष्यवाणी तो सच होगी होगी, पृथ्वी थे जैसे जाते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम, चैतन्य भागवत में लिखा है पृथ्वी जितने भी नगर आदि गांव है सब जगह मेरे नामों का प्रचार होगा, ये भविष्यवाणी तो सच होगी ही। अब इसको कौन स्वीकार करता है इस कृपा को, ये देखना है। तो श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार किया। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा यह कृपा मैं स्वीकार करना चाहता हूं, यह कृपा शक्ति मैं स्वीकार करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद को श्रेय मिल गया। इसी तरह से परंपरा के द्वारा हमें आदेश मिला है ग्रंथों के वितरण का। अब आपके ऊपर है कि इसको किस कृपा को स्वीकार करते हैं कि नहीं, और आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, यह भी निश्चित है। प्रभुपाद ने कह दिया ग्रंथों का वितरण होगा अगले 10,000 वर्षों तक, वो होगा, और अगर हम श्रेय लेना चाहते हैं तो वो कृपा हमारे पास आएगी, और नहीं लेना चाहते हैं तो वो कृपा और किसी के पास जाएगी। ये यथा माम प्रबद्यन्ते ताम सतय वजाम्यहम्। तो जिस तरह की शरणागति होगी उस तरह की कृपा मिलेगी। तो ये चेतन चरतामृत ग्रंथ शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमने दिए हैं, शिला प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें मिला है, बड़ा ही अनमोल ग्रंथ है। एक बार अमेरिका में बकले में एक भक्त जो है एक स्ट्रीट कॉर्नर में बंगाली स्वीट्स बेच रहा था, संदेश मिष्टी दोई चमचम वगैरह वगैरह, उसने आगे प्रभुपाद का बताया कि प्रभुपाद आज मैंने ये बंगाली स्वीट सेल किया है। उसको लगा कि प्रभुपाद बड़े खुश होंगे, प्रभुपाद क्योंकि बंगाल से हैं, तो उसने कहा कि प्रभुपाद ने बंगाली स्वीट्स मैंने सेल किया, उसमें मिष्टी दही था, चमचम था और संदेश था और जो भी बंगाली स्वीट्स होते हैं, तो वो सब मैं बेच रहा था। प्रभुपाद ने उनको इशारा किया, वेट वेट चुप रहो एक मिनट। फिर प्रभुपाद ने त्रिपुरारी महाराज वहां खड़े थे, त्रिपुरारी से महाराज से पूछा कि त्रिपुरारी कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया कल? तो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद हमने श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता और कई बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, चेतन चरतामृत भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो प्रभुपाद ने कहा दिस चेतन चरतामृत रियल बंगाली स्वीट, प्रभुपाद ने कहा दिस चेतन चरतामृत इज रियल बंगाली स्वीट। जब बंगाली के जो श्लोक है यानी कि प्यार बोलते हैं चेतन चरतामृत, तो ऐसा लगता है कि बोलने वाला व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा है। तो चेतन चरतामृत इतना मधुर यह ग्रंथ है, और प्रभुपाद ने यह ग्रंथ लिखा था 1975 में पब्लिश हुआ था ये। तो इससे संबंधित घटना बताते हैं, आपने कई बार सुना होगा लेकिन फिर एक बार और सुन लीजिएगा। तो प्रातःकाल श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, और रामेश्वर प्रभु और राधा वल्लभ प्रभु और कई सारे भक्त थे, और बीबीटी के ट्रस्टी थे बीबीटी के उस समय रामेश्वर प्रभु, और तो ये सब जा रहे थे। तो प्रभुपाद ने पूछा कि चेतन चरतामृत आप कब तक प्रिंट कर दोगे? चेतन चरतामृत ने प्रभुपाद ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम यानी कि 18 महीने में प्रभुपाद ने इसका अनुवाद कर दिया था बंगाली से इंग्लिश में। 18 महीने में श्रीमद् भागवतम को रोका और 18 मंथ्स में यानी कि डेढ़ साल में प्रभुपाद ने पूरा चैतन्य चरितमृत जिसमें 11,000 से ऊपर श्लोक है, प्रभुपाद ने 18 महीने में इसको कंप्लीट कर दिया। और प्रभुपाद पूछ रहे हैं रामेश्वर प्रभु से, राधा वल्लभ प्रभु थे वहां पे, कि आप मुझे कभी प्रिंट करके दोगे? तो उन्होंने कहा कि शायद प्रभुपाद बड़े खुश होंगे, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद 1 वॉल्यूम इन एवरी 2 मंथ्स, यानी कि लगभग 3 साल लग जाएंगे प्रिंटिंग करते करते। प्रभुपाद ने कहा नो, आई वॉन्ट 17 वॉल्यूम्स इन 2 मंथ्स। 17 वॉल्यूम से प्रिंट करने का था, तो प्रभुपाद ने कहा आई वॉन्ट 17 वॉल्यूम्स इन 2 मंथ। वो दोनों भक्त रुक गए, प्रभुपाद आगे निकल गए और वो स्तब्ध हो गए एकदम से। उनको लगा आप क्या बोले प्रभुपाद से, ना बोले क्या बोले, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। प्रभुपाद की ग्रेविटी देखकर ही लोग जो है चुप रहते थे और बोल नहीं पाते थे प्रभुपाद के सामने। प्रभुपाद जी की गंभीरता को देखते, चेहरे की गंभीरता को देखकर मुंह से आवाज नहीं निकलती थी किसी, तो वो लोग सोचते थे कि क्या बोले प्रभुपाद से। तो फिर रामेश्वर प्रभु ने कहा जब नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते तो बोलना तो पड़ेगा, हाँ बोल के फिर ना कर पाए तो। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद दिस इज इम्पॉसिबल। प्रभुपाद ने नेपोलियन को कोट किया। प्रभुपाद ने कहा इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड ओनली इन द फूल्स डिक्शनरी, मूर्खों के शब्दकोश में यह असंभव शब्द पाया जाता है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, इसका मतलब प्रभुपाद चाहते हैं कि करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ऐसे ही बोल दिए, नहीं, जब उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, वो शब्द निकल गया मुख से तो इसका मतलब वो ऑर्डर है, वो लॉ है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभुपाद वी विल ट्राई। और जहां पर प्रिंटिंग प्रेस था, जहां प्रिंटिंग मशीन थी, वहीं पर वो सारे शिष्यगण रह रहे थे और लगातार 2 महीने वहीं पर रहे, वहीं मंगल आरती, वहीं पे सब कुछ प्रसाद विशाल, और रोज लगभग 20 घंटे लगकर उन्होंने 2 महीने में चेतन चरितमृत प्रिंट कर दिए, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि एक तो देखिए बंगाली ऐसी भाषा है जो अमेरिकन के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे लिए चाइनीज लैंग्वेज, तो इसका प्रूफ रीडिंग करना और एडिटिंग करना और उसके बाद इसके कलर प्लेट्स तैयार करना, और वो भी पेंटिंग्स पे बेस्ड होंगे कलर प्लेट्स, और वो भी प्रभुपाद के द्वारा अप्रूव होने चाहिए, जो शास्त्रों के ऊपर आधारित होने चाहिए। तो इस कई सारी बातें हैं जो उनको ध्यान में रखनी होंगी इस ग्रंथ को प्रकाशित करने से पहले, बहुत चैलेंजिंग था उनके। तो इसलिए क्या है कि लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और 2 महीने के अंदर जो है उन्होंने चेतन चरितमृत प्रिंट करके दिखा दी। अमेरिकन एडिशन 1975 लॉस एंजलिस में पहली बार चेतन चरितमृत प्रिंट हुआ था। और प्रभुपाद जब नेक्टर डिवोशन जब प्रिंट हुआ था 1970 में, तो लॉस एंजलिस व्यास आसन से प्रभुपाद ने वो बुक दिखाया सबको, भक्तों को, और कहा दिस नेक्टर डिवोशन इज अ लॉ बुक ऑफ विस्कॉन फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स, यानी कि ग्रंथ जो है अगले 10,000 वर्षों तक है। और लॉ बुक का मतलब यह है इसके बाहर कुछ भी और कार्य करेंगे हम लोग वो लॉ नहीं होगा, अनलॉफुल होगा, यानी कि हमारे सारे कार्य, हमारी सेवाएं वो ग्रंथों के पर आधारित होना चाहिए, बुक्स आर द बेसिस। इसलिए ग्रंथों का प्रकाशन और ग्रंथों का वितरण ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा थी श्रील प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद के लिए जो आज्ञा मिली थी अपने गुरु से यही मिला था बस। और प्रभुपाद एक जगह बता रहे हैं कि जब मैं गोलोक में जब कृष्ण के साथ था तो कृष्ण मुझे भेजना चाह रहे थे और मैं आने से मना कर रहा था। प्रभुपाद ने एक लेटर में लिखा है, तो प्रभुपाद लिख रहे शायद भागवत दास को किसी को लिखा था, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं वहां से आना नहीं चाहता था लेकिन कृष्ण कहा आप जाओ, हम सारी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि कौन आएगा इस पृथ्वी में, और वो भी कलयुग का वातावरण नहीं, फिल्थी प्लेस है, गोलोक धाम के मुकाबले तो ये तो बिल्कुल गार्बेज है, नहीं प्रभुपाद आना नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जाओ, आप ग्रंथों की रचना करो केवल, बस बाकी सब व्यवस्था हम करेंगे। तो जो आज्ञा जो प्रभुपाद को मिली केवल एक ही ऑर्डर था, और वो क्या था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और बुक पब्लिकेशन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और कोई आज्ञा नहीं थी उनके लिए। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा एक एम्पायर क्रिएट कर दिया, साम्राज्य स्थापित कर दिया पूरे विश्व में कृष्ण भावना का, जिसको कहते हैं सिविलाइजेशन का कॉन्क्वेस्ट पूरे पृथ्वी में, जिसके माध्यम से प्रभुपाद ने ग्रंथों का वितरण ही नहीं, ग्रंथों का प्रकाशन ही नहीं, बल्कि बहुत सारे कार्य कर दिए उन्होंने। और वास्तव में ग्रंथों के वितरण से ही शुरू हुए। राधा दामोदर मंदिर की आपको एक घटना बताते हैं। वहां पे प्रभुपाल वहां रह रहे थे जब, तो एक दिन की घटना है कि प्रभुपाल जो है रूप गोस्वामी से वहां प्रार्थना किया करते थे और आधी रात को भी प्रभुपाल वहां जमीन पर लौटते थे और रोते थे। पास में एक बाबा जी थे जिन्होंने छत से देखा था उनको कि राधा दामोदर मंदिर से रोज रोने की आवाज आती है, और उन्होंने क्या देखा कि प्रभुपाल जमीन पर लेटते हैं और ब्रज व्रज में लौटते हैं और रूप गोस्वामी के सामने प्रार्थना करते हैं, कुछ अगरबत्ती जलाते हैं। तो उन्होंने जाके पूछा था कि आपको मैंने देखा कल रात को आप रो रहे थे, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि मैं रूप गोस्वामी से प्रार्थना कर रहा था, मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं और इतने वर्ष हो चुके हैं, मैं वृद्ध हो रहा हूं, पता नहीं कैसे हो गए। तो ये सोच के बहुत दुखी होते थे प्रभुपाद। तो एक दिन प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे थे और बहुत तेज बुखार था प्रभुपाद और बहुत उदास लग रहे थे। प्रभुपाल अपने पलंग में बैठे हुए थे अपने कमरे में ही, राधा दामोदर मंदिर का कमरा तो देखा होगा आप सबने, तो वहां प्रभुपाल पलंग में बैठे थे। तो अच्छा, उससे पहले एक घटना हुई थी, वो जो एक लड़का था वहां पे, उसका नाम भूल रहा शायद श्याम गोपाल से था कुछ, और बाद में वो उस मंदिर का वो महंत भी बना था। वो क्या करता था, रोज राधा दामोदर मंदिर के दान पात्र से पैसा निकालता था। लड़का तो छोटा ही था लेकिन पैसे निकाल लेता था वहां से। प्रभुपाल ने उसको पकड़ लिया था। प्रभुपाल ने पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या मैं ये पैसे निकाल रहा हूं? क्यों, तुम चोरी कर रहे हो, ये अपराध है, तुम्हें क्यों चाहिए पैसे? उन्होंने उसने कहा कि प्रभुपाल उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं मीठा खाऊंगा, मुझे मीठा बड़ा अच्छा लगता है, रबड़ी पेड़ा वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाल ने कहा मैं तुम्हें रबड़ी बना के खिलाऊं तो? उसने कहा मुझे आप खिलाएंगे तो मैं क्यों चोरी करूंगा? तो प्रभुपाल उस लड़के को कैसे सुधारे, प्रभुपाल रोज रबड़ी बना के खिलाते थे उस लड़के को और उसे चोरी करना बंद कर दिया। बाद में उस मंदिर का महंत बना। तो हम बता रहे थे वो लड़का फिर आया था उस दिन कमरे में और उसने देखा प्रभुपाद जो है बहुत बीमार है। उसने पूछा कि स्वामी जी आप क्या बात है, बहुत दुखी लग रहे हैं, बहुत बीमार लग रहे हैं, बुखार है, मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं क्या? बोलते नहीं, मेरा रोग ये नहीं है, मेरा रोग है कि मैं क्या करूं, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है और लगभग 70 साल का होने वाला हूं मैं, तो कैसे आज्ञा का पालन कर पाऊंगा मैं? तो ये सोच के बहुत दुखी थे प्रभुपाल। और उस दिन रात को प्रभुपाल जी के कमरे से कुछ बातें करने की आवाज आई थी और ये लड़का जो था उसने आवाज सुन ली आधी रात 11:30, 11:30, 12 बजे करीब, और ये जो परिवार के और लोग भी थे उन्होंने भी आवाज सुनी। तो सब लोग कमरे के बाहर आके बैठ गए, दरवाजा बंद था अंदर से, तो अंदर भीतर नहीं जाने गए नहीं। और प्रभुपाल जी के कमरे से बहुत तेज रोशनी आ रही थी, प्रकाश आ रहा था, बहुत तेज प्रकाश आ रहा था, और वो प्रकाश इतना तेज था ऐसा नहीं लग रहा था कि बल्ब का लाइट हो। जब बल्ब का लाइट होता है तो पता चल जाता है कि बल्ब से आ रही लाइट, और आपने देखा होगा उस कमरे में जो बल्ब है उससे जो रोशनी है वो बहुत ही ज्यादा धीमे धीमे है, लेकिन तेज प्रकाश अगर निकल रहा है फेल्जेंस की तरह, ब्रह्म ज्योति की तरह, तो कुछ विशेष बात है उस कमरे में, है ना, विशेष बात। हरे कृष्ण। तो वो प्रकाश कहां से आ रहा है, वो तेज कहां से आ रहा जाए, तो वो कहां से आ रहा है प्रकाश? तो आवाजें क्या आ रही थी, बात चल रही थी। तो वहां पर दूसरा व्यक्ति जो था वो प्रभुपाद से कह रहा है या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप क्यों चिंता करते हैं, आप बस ये ग्रंथ लिखिए, ग्रंथों का प्रकाशन करिए और पाश्चात्य जगत में जाइए, हम आपके लिए सारी व्यवस्था करेंगे। जब जब आप भक्ति रसामृत सुंदर और चेतन चरतामृत का पाठ करेंगे मुझे आप अपने नजदीक पाएंगे, ये महान कार्य आपके द्वारा होगा। तो ये सब बातें चल रही थी। तो अगले दिन फिर जब गए प्रभुपाद के रूम में तो प्रभुपाद एकदम बहुत खुश लग रहे थे और उनके गले में बहुत लंबी माला थी और चेहरा बहुत एकदम से खिला हुआ था उनका और बिल्कुल भी बुखार नहीं था, बिल्कुल श्वास बिल्कुल ठीक था उनका। प्रभुपाद बिल्कुल ठीक हुए, अगर आप तो बहुत ठीक लग रहे हैं, बहुत स्वस्थ लग रहे हैं, क्या हुआ था कल रात को आपके कमरे से बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी? तो प्रभुपाल ने कहा कि कल कौन था आपके कमरे में, कल आप किसी से बात कर रहे थे? तो प्रभुपाल ने कहा कि कल मुझे श्रील रूप गोस्वामी के दर्शन हुए। तो प्रभुपाल रूप गोस्वामी की समाधि के बाद रोज जाते थे, अगरबत्ती जलाते थे और प्रार्थना करते थे कि अगर आप सत्य हैं, अगर आप यहां पे वास्तव में मौजूद हैं, तो आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते? तो इस कारण से श्रील रूप गोस्वामी के दर्शन प्राप्त हुए और प्रभुपाल ने कहा मुझे उनके दर्शन मिले, उनका आशीर्वाद मिला। अब मुझे पूरा विश्वास है इस कृष्ण भावना अमृत का आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे विश्वभर में होगा। और इसी तरह से एक और घटना बताते हैं। ये घटना है अलाहाबाद की, जब यहां पे प्रभुपाल प्रयाग फार्मेसी के नाम से जो चला रहे थे बिजनेस अपना, तो उस समय उनके एक मित्र थे डॉक्टर ओबीएल कपूर। डॉक्टर ओबीएल पोर और डॉक्टरेट थे लिटरेचर में अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, पहले मायावादी थे लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से वो वैष्णव बन गए और उन्होंने दीक्षा भी ली उनसे। पहले मायावादी थे, बाद में वैष्णव बन गए। तो फिर वो एक बार आए प्रभुपाद के पास और प्रभुपाद से कहा कि आप बहुत कुछ बनाते हैं, आपके पास कोई रसायन है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का? रसायन मतलब टॉनिक है आपके पास कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का? प्रभुपाद ने कहा मेरे पास रसायन नहीं है लेकिन मेरे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? या रेसिपी है। और मेरे पास रेसिपी कौन सा है? रेसिपी है त्रिनाद अभी सुने चे न तरोर अभी सही सुना, अमानी ना माने देना कीर्तनीय सदा। और फिर प्रभुपाल ने कहा कि ये रेसिपी है और इस रेसिपी का वितरण मैं पूरे संसार भर में करूंगा। प्रभुपाल ने कभी ये बोला होगा 1930s या 1940s में? तो प्रभुपाद जानते थे कि पूरे पृथ्वी में इसका प्रचार होने वाला है कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का, और प्रभुपाद एक विजन लेके चल रहे थे और ग्रंथों का वितरण के लिए प्रभुपाद ने बहुत कष्ट उठाया इन ग्रंथों का प्रकाशन करने के लिए। हम जानते हैं पहले प्रभुपाद छिपीवाड़ा में रहते थे। छिपीवाड़ा मंदिर में आप सब गए अभी कायाकल्प होने के बाद? नहीं गए तो एक बार जाके देखिएगा, बहुत सुंदर बनाया गया है। और वहां पे प्रभुपाद रहते थे, उस समय बहुत ही उजड़ा हुआ सा इमारत था वो, बहुत पुराना इमारत था वो, और उस इमारत की हालत अच्छी नहीं थी। और प्रभुपाद वहीं रहते थे और वहां से प्रभुपाद अपनी पत्रिका का वितरण करते थे, भगवत दर्शन पत्रिका का। चावड़ी बाजार नई सड़क से कागज खरीद के लाते थे और पत्रिका छापते थे। तो एक बार किसी ने उनको बता दिया कॉफी होम में एक आम आदमी ने कि स्वामी जी आप ये पत्रिका छाप रहे हैं और बेच रहे हैं, लोग उसको लेंगे फिर कूड़ेदान में डाल देंगे, आप किताबें क्यों नहीं लिखते? तो उनको लगा कि मेरे गुरु महाराज जी बोल रहे हैं इनके माध्यम से। और प्रभुपाद ने फिर श्रीमद भागवतम का अनुवाद करना शुरू किया था और इस तरह से भागवत का जो प्रथम स्कंद है तीन प्रतियां प्रकाशित करने की इच्छा हुई थी प्रभुपाद की, तीन वॉल्यूम्स में, तीन भागों में। तो अब क्या था कि वो उसको छापने के लिए फिर पैसे चाहिए। प्रभुपाद के पास कोई कुछ भी नहीं था, उनके पास ना कोई था साथ में उनके हेल्प करने के लिए, ना उनके पास कोई धनराशि थी, कुछ भी नहीं था। और जो पैसा वो थोड़ा बहुत मिलता था पत्रिका का वितरण करके उसी से चलाते थे वो अपना। उनको ये भी नहीं पता था प्रभुपाद को कि शाम को प्रसाद क्या लेंगे, वो कैसे लेंगे प्रसाद शाम को, ये भी प्रभुपाद निश्चित नहीं थे। तो प्रभुपाद डालमिया जी के पास गए, जयहरी डालमिया के पास, और उनसे कहा कि मैं ये श्रीमद् भागवतम चाहता हूं प्रकाशित करने के लिए, पब्लिश करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे कुछ आज स्पॉन्सर कर दीजिए। तो डालमिया जी ने कहा कि ठीक है लेकिन आपको जाना पड़ेगा गौरखपुर, वहां हमारे गुरुदेव हैं हनुमान प्रसाद बोद्दार जी, अगर वो अनुमति दे देंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। तो प्रभुपाद फिर गौरखपुर गए और गौरखपुर में मिले हनुमान प्रसाद बोद्दार जी से, जो पहले मायावादी थे लेकिन राधा कृष्ण की सेवा भी करते थे, उनके पास विग्रह था राधा कृष्ण का। तो प्रभुपाद ने कहा था उनके लिए कि हालांकि इनके अंदर थोड़ा मायावाद का टिंच है लेकिन चूंकि ये राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ही भक्त बन जाएंगे। तो पोद्दार जी को दिखाया तो पोद्दार जी ने कहा महाराज जी आप क्यों शर्मिंदा करते हैं, स्वामी जी आपने जो जो लिखा है बहुत अच्छा ही लिखा है। उन्हें चिट्ठी लिखकर दे दी डालमिया जी को, स्वामी जी जो भी लिखे उनको छापा जाए। और फिर प्रभुपाद उसको लेकर चिट्ठी को लेकर गौरखपुर से कहां गए, दिल्ली आ गए और डालमिया जी से मिले। डालमिया जी बड़े खुश हुए, डालमिया जी कहा ठीक है स्वामी जी आप चिंता मत करिए हो गया आपका काम। तो फर्स्ट कैंटो श्रीमद भागवतम प्रभुपाद ने 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया था और 300 प्रतियां लेके गए थे अमेरिका, आप जानते होंगे। लेकिन पहली 100 प्रतियां हैं, अभी छिपीवाड़ा में एक व्यक्ति आए थे उस दिन वृद्ध से थे, उन्होंने कहा कि 100 कॉपीज मैंने खरीदी थी प्रभुपाद से। तो ये छिपीवाड़ा जो है ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जन्म स्थान है, और सबसे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन इस्कॉन में किसने किया? स्वयं प्रभुपाद ने किया, इस्कॉन की स्थापना से पहले। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन और बुक पब्लिकेशन ये प्रभुपाद जी की मेन सेवा थी। उनके गुरु महाराज ने यही सेवा दी थी उनको केवल, और चाहे तो वही कर सकते थे वो, लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि आज के समय में अगर हम लोग ये सब ना करें मंदिरों का निर्माण, तो लोग नहीं आकर्षित होंगे ग्रंथों से भी, तो साथ साथ करना पड़ेगा जैसे उनके गुरु महाराज ने किया, पांच श्राद्ध की विधि और भागवत विधि का समावेश। तो इस तरह से ग्रंथों के वितरण का इतिहास है। और बाद में जानते हैं अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में केशव प्रभु थे वहां के मंदिर के अध्यक्ष, और दो भक्त बुद्धिमंता प्रभु और प्रेमार्णव प्रभु ये गैस स्टेशन में गए थे। वो लोग बैक टू गॉड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और वहां पे उनके पास गैस डालने के लिए भी पैसे नहीं थे, गाड़ी में गैस डल तो गया था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया वो पेट्रोल पंप के इंचार्ज को, कहा कि आप ये कृष्णा बुक ले लीजिए। और पहली बार वहां कृष्णा बुक छपी थी 1969 के एंड में समझ लीजिए, तो वो व्यक्ति तैयार होगा कृष्णा बुक लेने के लिए। और इस तरह से कुछ कॉपीज और निकाली, तो प्रभुपाद बड़े खुश है जब प्रभुपाद को पता चला, और धीरे धीरे करके फिर कृष्णा बुक का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया इस्कॉन में, सैन फ्रांसिस्को में, उसके बाद फिर और जगह भी कई स्थानों में। तो प्रभुपाल ने एक बहुत बड़ा हमें जो है टास्क दिया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो मिला पका पकाया प्रसाद मिल गया थाली में, हमें सब्जी नहीं काटनी, हमें कुकिंग नहीं करना है, नहीं हमें कुछ भी नहीं करना है, थाली आपके सामने रखी हुई है, प्रसाद पाना है और प्रसाद का वितरण करना, बस दो ही काम करने हैं। कितना सिंपल से काम है। और उन दिनों जब नरोत्तम दास ठाकुर शिला जी गोस्वामी ने जब आज्ञा दी थी नरोत्तम दास ठाकुर को, श्यामानंद प्रभु को और श्रीनिवास आचार्य को कि आप लोग बंगाल और उड़ीसा में प्रचार करें, तो इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों क्या है कि प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी का था नहीं, कोई प्रिंटिंग प्रेस था नहीं कि सम्राट प्रिंटर्स या रेखा प्रिंटर्स या गोकुल प्रिंटर्स में या कोई प्रिंटर में भेज दो, आज हमें 1,00,000 कॉपी चाहिए भगवदगीता के, ऑर्डर दे रहे हैं बीबीटी को, 2,00,000 गीता चाहिए, 3,00,000 गीता चाहिए, और यहाँ ट्रक्स की भरमार आ जाती है, रातों रात ट्रक्स लगे रहते हैं मंदिर के बाहर। नहीं, तो उन दिनों ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि किसी संस्कृत के पंडित को, विद्वान को सेवा में लगाना होता था, और वो नकल करके देगा, तो नकल करेंगे तब जाके वितरण होगा। तो 1579 में ये 1579 गौर पूर्णिमा के दिन, गौर पूर्णिमा के समय में नरोत्तम दास ठाकुर ने शिल जी गोस्वामी को एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट भेजा था। ये बंगाली में लेटर है, और ये लेटर कहां से मिला आपको बाद में बताएंगे, लेकिन लेटर का ट्रांसलेशन मेरे पास है, बंगाली में नहीं है, इंग्लिश में है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने 1579 में ये लेटर लिखा था शिल जी गोस्वामी को कि क्या किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट भेज रहे हैं गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य, एनुअल रिपोर्ट, श्रीनिवास आचार्य का रिपोर्ट, भागवतम विद वैष्णव तोषणी 6, ज्ञान दास सॉन्ग 23, गोविंद दास सॉन्ग 19, नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना 11, भक्ति रसाम सिंधु 1, चैतन्य भागवत 22, लोचन दास चैतन्य मंगल 6, हरि भक्ति लास 1 एंड मुरारी गुप्ता स्कर्चा 1। ये स्कोर है श्रीनिवास आचार्य का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि लॉजिस्टिक्स नहीं है, कोई ट्रक नहीं है, कोई कार नहीं है, और जगह जगह कैसे जाना पड़ेगा, बैलगाड़ी में रखे, राइट और ऐसा नहीं है कि आपके पास वर्कर या कोई लेबर होंगे जो उठाएंगे बुक्स को और ग्रंथों को, खुद ही उठा के रखना पड़ेगा, तो सारा कार्य खुद ही करना पड़ेगा। नरोत्तम दास ठाकुर का स्कोर भागवतम 2, ज्ञान दास स्कोर 21, प्रार्थना 56, चैतन्य भागवत 45, चैतन्य चरणामृत चंद्रामृत 5, वासुदेव घोषित गौरांग पदावली 34, श्यामानंद प्रभु का स्कोर भागवतम 4, ज्ञान दास सॉन्ग्स 10, गोविंद दास सॉन्ग्स 11, अदर सॉन्ग्स 34, नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना 16, भक्ति रसाम सिंधु 5, उज्ज्वल नीलमणि 1, चैतन्य भागवत 25, चैतन्य चंद्रामृत 15, वासुदेव घोषित गौरांग पदावली 14। ये स्कोर था उनका, इन तीन आचार्यों का, जो जीव गोस्वामी को रिपोर्ट भेजा है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि परंपरा से चला आ रहा है ये, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य तब से शुरू हो गया है और परंपरा के द्वारा हमें मिला है आज तक। और नरोत्तम दास ठाकुर लेटर के अंत में क्या लिख रहे हैं देखिए, बड़े ध्यान से सुनेगा, बहुत बढ़िया है। अंटिल वी आर एबल टू डेवलप अनदर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रिंट द बुक्स, अब टेक्नोलॉजी लिखा है इंग्लिश में, लेकिन बंगाली में लिखा होगा, और कोई तरीका और कोई रास्ता नहीं मिल जाता हमें इन किताबों को छापने का. ड्यू टू द डिफिकल्टी इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग बुक्स बाय हैंड, ब्रैकेट में लिखा है, विच इज बीइंग नेग्लेक्टेड कॉमा, मोस्ट ऑफ आवर बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स विल बी पोस्टपोन. यानी कि हमारा पुस्तक वितरण का कार्य जो है स्थगित हो रहा है, क्योंकि अभी इन किताबों को छापना तो बड़ा मुश्किल है, किताबों को दोबारा उतारना इतना आसान नहीं है. और उसके बाद क्या लिख रहे हैं, वी आर श्योर दैट वन डे सम मैग्नानिमस पर्सन विल कम एंड विल डेवलप द मूवमेंट ऑफ एक्स्टैटिक लव लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. ये महान व्यक्ति आएगा, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाएगा. डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में पुस्तकों का वितरण करेगा. Until then, what will be persons who are poor, bereft and abominable do? हम जैसे दीन हीन लाचार तब तक क्या कर सकते हैं. लेकिन हमें पूरा विश्वास है, एक व्यक्ति आने वाला है, एक महापुरुष आने वाला है, जो पूरे संसार भर में पुस्तकों का वितरण करके इस महापुरुष के आंदोलन को आगे बढ़ाएगा. फिर क्या लिख रहे हैं, एक और बात लिख रहे हैं, What is the benefit of discussing the stories of Lord's incarnation? अवतारों के बारे में चर्चा करने का क्या लाभ, विग्रह की सेवा करने का क्या लाभ, या फिर लीला कीर्तन करने का क्या लाभ, या इस माला में महामंत्र का जप करने का क्या लाभ, अगर हम इतनी कम संख्या में ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं. तो ये देखिए, ये नरोत्तम दास ठाकुर का लेटर था शिलजी गोस्वामी को. तो शिलजी गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने आज्ञा दी थी इन आचार्यों को कि आप ग्रंथों का विचरण करें बंगाल और उड़ीसा में, और इस कार्य को बहुत ही गंभीरता से उन्होंने अपनाया, और ये आगे देखिए श्रील प्रभुपाद जी तक पहुंची है और आप तक पहुंची है, यानी कि हम तक पहुंची है. इस परंपरा को बढ़ाने का जो कार्यभार है हमारे ऊपर है, हमारे वर्तमान गुरुजन जो प्रभुपाद जी के शिष्य है, आज हमारे साथ हैं, कल नहीं होंगे वपु रूप में, लेकिन उनकी वाणी हमारे साथ है. और उस वाणी को अगर हम शिरोधार नहीं करेंगे, हृदयांगम नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे और कोई नया रास्ता अपना लेंगे हम प्रचार का, तो फिर परंपरा क्या हो जाएगी, फिर से छिन्न भिन्न हो जाएगी. एवं परंपरा प्राप्तम क्या है, एवं राज क्या है, एवं परंपरा प्राप्तम नहीं नहीं सकाल नहीं हम आता योग नष्ट परंत, तो परंपरा छिन्न भिन्न हो जाएगी नहीं. तो दिव्य ज्ञान यानी कि जब प्राप्त कर रहे हैं और उसके पीछे जो मनोभिष्ट है, उसका जो मनोभाव है, उसको भी स्वीकार करना बहुत जरूरी है. प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बड़ा संघर्ष किया है इस आंदोलन को फैलाने में, पूरे विश्व भर में इन ग्रंथों के माध्यम से. पृथ्वी प्रभु के बारे में सुना होगा आपने, जर्मनी के प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, जर्मन डिसाइपल हैं, और ईश्वर उपनिषद दिया था किसी भक्त ने उनको शाम के वक्त, और पूरी रात उन्होंने वो किताब पढ़ी, अगले दिन सुबह चले गए सामान पैक करके मंदिर. और पृथ्वी प्रभु बताते हैं कि एक बार वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, कई भक्तों के साथ गाड़ी में गए थे और उन्हें एक्सीडेंट हो गया. तो फिर वो क्या है, गाड़ी पलटती है, हम जानते हैं, हमने देखा हुआ है, क्योंकि हमने किसी के गाड़ी को गाड़ी के साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ था और गाड़ी पलटी हुई थी, हमने आंखों के सामने देखा है. गाड़ी पलटने का मतलब क्या है, हम लोग जा रहे थे लुधियाना रथ यात्रा में, सुबह का वक्त था और कनॉट प्लेस पहुंचे होंगे, कस्तूरबा गांधी मार्ग, और सुबह सुबह वहां पे सिग्नल जो होता है ना, वो पीली बत्ती थी, सुबह लगभग 7:45 बजे सिग्नल जो है ऑन नहीं था, तो उसमें येलो लाइट जल रहा था और लोग, कई लोग वहां जॉगिंग कर रहे थे. और चौक पे हम पहुंचे थे, हम मारुति वैन में थे और सामने से एक गाड़ी आई वैगनार, और हमारी गाड़ी ऐसे जा रही थी और उसकी गाड़ी ऐसे, ना उसने गाड़ी रोकी ना हमने गाड़ी रोकी, हमारे ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारा, या ब्रेक मारने में पता नहीं क्या हो गया, उसको दिक्कत हो गई या भूल गया या नहीं लगा पाया ब्रेक, यानी कि जो होने वाला था हुआ, और हमारी गाड़ी ने उस गाड़ी को मारा, उसकी गाड़ी के दरवाजे को मारा और उसकी गाड़ी पलटी, चारों टायर उसके ऊपर हो गए और गाड़ी जैसे कि मूवीज में दिखाते दूर तक घसीटती हुई चली गई. तो हमने कहा कि चलो यही है रथ यात्रा आज के दिन, अभी आएगी पुलिस और आएगी भी एम्बुलेंस. अच्छा मजे की बात है, हमारी गाड़ी नहीं पलटी, हमारी गाड़ी वही रुक गई, स्तब्ध हो गई अवस्था में, वहां पे आगे का बोरन अंदर चला गया, हमने देखा नहीं, टायर भी उसके अंदर फंस गया था, वो भी नहीं देखा हमने, हमें लगा कि बस हम बच गए, क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं पलटी है और वैगनार नहीं, हमारी घर की मारुति वैन नहीं पलटी और उनकी उसकी जो वैगनार है वो उल्टी हो गई बिल्कुल, वो गाड़ी बिल्कुल ही उल्टी हो गई. अब ये चारों लोग लेंगे घायल, हो सकता है एक आदमी इसमें खत्म भी हो गए हो, और सामने से एम्बुलेंस आएगा, पुलिस आएगी, और फिर हम पूरा दिन पुलिस स्टेशन बिताएंगे, यही बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ. तो ये हमने सोचा था, हो गया बस. तो हम लोग स्तब्ध अवस्था में हम भी बैठे थे, हमने सोचा कि करेंगे अब हम लोग उनको बचाने जाएं क्या करें, तो आगे हमने कहा नहीं यार उतरना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल जो है मानवता नहीं है और कम से कम हमें उतरना चाहिए और को देखना चाहिए क्या हुआ उन लोगों को। तो फिर उतर के देखने लगे, पीछे से हरे सुंदर प्रो की गाड़ी आ रही थी, तो उतर के फिर उसके बाद फिर हम लोग उन लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़े, तो वो अंदर से चिल्ला रहे थे, वो चिल्ला रहे थे कि कहाँ है ड्राइवर, कहाँ है ड्राइवर। तो हमने कहा ड्राइवर को आप बाद में देखिएगा, पहले आप बाहर तो निकलिए। तो गाड़ी को फिर सीधा किया, धीरे धीरे सीधा किया और वो लोग सब बाहर निकले, और बाहर निकले एकदम साबुत, मतलब मतलब चारों के चारों बिल्कुल साबुत थे। थोड़ी बहुत स्क्रैच हुआ, थोड़ा खरोच आई थी कोने में, थोड़ा सा एकदम स्क्रैच हुआ होगा थोड़ा बहुत, और वो चारों के चारों खड़े हो गए। और वो लोग भी सोचने लगे यार गलती इनकी भी नहीं, हमारी भी गलती है, तो अच्छे लोग थे इत्तेफाक से। और वो गाड़ी को थोड़ा सा धक्का मार के वो लोग कोने में ले गए अपनी गाड़ी को, वैगनर को। और हमने सोचा कि करें क्या, तो पीछे से हरी सुंदर वो गाड़ी आई, उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप आइए हमारी गाड़ी में, ये हम बातें होती रहेंगी और आपका ट्रेन निकल जाएगा। तो 7:45 एक्सीडेंट हुआ था, 7:05 में लुधियाना के लिए हमने ट्रेन पकड़ी थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, सर प्लेटफॉर्म नंबर 16 से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और हम लोग चले गए लुधियाना रथ यात्रा में। मैं सोचा भी नहीं था कि क्या होगा, ये हुआ क्या, और ना पुलिस आई ना एम्बुलेंस आया ना कोई आया। तो हमने गाड़ी को पलटते हुए देखा है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि गाड़ी को उल्टा होते देखा है, तो इस तरह से गाड़ी उल्टी हुई होगी उस समय भी, और बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, और चारों अंदर के अंदर ही थे वो भक्त लोग पृथ्वीभूत हिसाब में। और सामने से क्या हुआ, काफी सारे लोग आ गए, एम्बुलेंस आ गई, पुलिस वाले आ गए। अभी इंडिया तो नहीं है ये, इंडिया में तो कोई पहुंचा नहीं, जब तक वो आदमी घायल ना हो जाए मर ना जाए तब तक कोई आएगा नहीं, जैसे मूवीज में दिखाते सब कुछ होने के बाद ही पुलिस आती है। तो वेस्ट में ऐसा नहीं, वेस्ट में अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो विद इन सेकेंड्स आप देखेंगे वहां पे पुलिस आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगा, बहुत फास्ट, सुपर फास्ट है वहां पे। तो वहां पे वो गाड़ियां सारी आ गई, लोग भी इकट्ठे हो गए काफी सारी। उन्होंने कहा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आप लोग निकले बाहर, हम आपकी कुछ हेल्प करें। तो अंदर पृथ्वी बोर्ड डिस्कस कर रहे हैं भक्तों से, अरे बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, ये सब बुक्स ले सकते हैं। क्योंकि वेस्ट में समस्या क्या है, यहां तो जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, अगर एक आदमी ले लेता 100 लोग और खड़े हर 10 कदम में। वेस्ट में ऐसा नहीं है, अगर 10 लोग निकल गए तो अगले 10 किलोमीटर तक तो कोई नहीं मिलेगा आपको, खाली मैदान बिल्कुल। अरे उत्साह होगा भी आपके अंदर तो बांटोगे किसको, खुद खरीदेगा कौन, नहीं आप यहां इंथ्यूज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, और बात पता चला कि सिर्फ पेड़ पौधे ही है और चारों तरफ हरियाली है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, तो किसको बांटोगे आप, तो सब ऐसे ही डाउन हो जाएगा, कोई होना तो चाहिए खरीदने वाला। तो चारों तरफ लोग ही लोग थे, और कहा कि यार बुक से सब ले सकते हैं, आप लीजिए लीजिए किताब लीजिए किताब लीजिए, हम सबको दे रहे हैं सबको दे रहे हैं। तो लोगों ने समझ के दयावश जो है कुछ लोगों ने किताबें खरीदना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उनको बाहर निकाला गया। तो एम्बुलेंस भी आ गई, पुलिस वाले भी आ गए, पुलिस वाले पूछने लगे कि आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो बताइए। उन्होंने कहा हमें किसी तरह की हेल्प नहीं चाहिए, आप एक हेल्प करिए, आप ये बुक्स ले लीजिए। और कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ये बात बताइए, एक्सीडेंट हो गया आपका, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है और आप लोगों को बिल्कुल डर भी नहीं है और आप उल्टा जो है हमें बुक्स दे रहे हैं, ये क्या है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि अभी किताबें पढ़ेंगे ना आप भी समझ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत सारे जितने लोग वहां पर उपस्थित थे सबने बुक्स खरीद लिया। तो ये है ट्रांसेंडेंटल पोजिशन। आप देखिए जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, भगवद गीता में तो बहुत सारे श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन एक आध श्लोक जो है बड़े महत्वपूर्ण हमें लगते हैं और हमें लगता है कि भक्तों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। उसमें से ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, 14वें अध्याय का श्लोक संख्या 26। माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जो अभिविचारणी वृत्ति करता है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है वो वास्तव में गुणों को पार कर जाता है, ब्रह्म स्थिति में पहुंच जाता है, किसी भी परिस्थिति में जो विचलित नहीं होता है। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो हमने घटना सुनाई आपको, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसमें देखा कि भक्त लोग वास्तव में गुणातीत हो गए, ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंच गए। इसलिए उनको ये भी चिंता नहीं थी, ये भी नहीं सोच रहे थे कि हमारा इतना एक्सीडेंट हुआ भयानक, हमारे हाथ है या पांव है ये भी नहीं देख रहे हो। उनको याद क्या है, केवल उनके हाथ में प्रभुपाद की बुक्स है और वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकले थे और डिस्ट्रीब्यूशन उनको करना है बस। वैसे याद भी का बुद्धि है कि हे गुरुनंदना, नहीं जैसे कि रशिया में एक बार मॉस्को में, ये 3 साल पहले की घटना मैं बता रहा हूं, हमारे गुरु महाराज व्यासासन में बैठे ही थे, भागवतम क्लास शुरू ही कर रहे थे, महाराज को फोन आया, व्यासासन में बैठे बैठे महाराज बात कर रहे थे गुरु महाराज, और फोन में मॉस्को से किसी ने बताया कि महाराज जो रशियन डिवोटी थे मॉस्को में, जो डिवोटी थे कुछ संकीर्तन के डिवोटी सुबह सुबह जा रहे थे और उनकी गाड़ी स्किड कर गई स्नो में और उनकी गाड़ी पलट गई, शायद एक दो लोग जो है उसमें शरीर छोड़ दिए ऑन द स्पॉट और बाकी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो महाराज ने पूछा कि कौन था वो, तो महाराज ने बताया, महाराज एकदम से क्लास शुरू करने से बोला, शुरू करने से पहले बोल दिया महाराज ने कि महाराज कहा कि ट्रैवलिंग संकीर्तन करते हुए ये भक्त लोग शरीर छोड़े हैं, फिर महाराज ने कहा कि आई एम श्योर दे हैव गॉन बैक टू कृष्णा, दिस डिवोटीज वर ऑन संकीर्तन। देखिए इतना प्रभाव है संकीर्तन का, संकीर्तन में इतना पावर है। ये अगर कोई पूछ सकता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में कौन सा शॉर्टकट है, तो स्पिरिचुअल लाइफ में शॉर्टकट है वो तो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इससे और कोई शॉर्टकट आपको मिलेगा नहीं। संकीर्तन के अलावा बाकी जितने भी कट हैं वो कट जरूर हैं लेकिन शॉर्टकट नहीं है, राइट। वैसे तो डिवोशनल सर्विस सभी सारी सेवा एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में है, लेकिन एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में भी अगर देखा जाए तो एक क्या प्लेटफॉर्म ऐसा है और उस प्लेटफॉर्म में पहुंचने पर क्या होता है, आप कृष्ण के बहुत प्रिय हो जाते हैं, गुरु परंपरा के बहुत प्रिय बन जाते हैं। तो इसलिए इन ग्रंथों के वितरण पर प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया, हमारे वर्तमान गुरुजन भी बहुत जोर देते हैं, हमारे गुरु महाराज बहुत जोर देते हैं ग्रंथों के वितरण पे, हम सबको इन ग्रंथों के वितरण पे लगना चाहिए। और जैसे कि गीता में, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी बोला है, मासाना मार्ग शिशु हम अमंग द मंथ्स, आई एम मंथ ऑफ द नवंबर ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, सभी महीनों में कौन सा महीना में नवंबर और दिसंबर, राइट। तो क्यों बोला, इसीलिए बोला है, इसलिए भी नहीं कि कात्यानी व्रत है, बल्कि इसलिए क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस कॉल में। पहले ही भविष्यवाणी कर दी भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पूर्व कि नवंबर में होगा कार्तिक और दिसंबर में होगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, राइट। तो सारी ऊर्जा सारी शक्ति आपने इकट्ठी कर ली नवंबर के महीने में, खूब वृंदावन जा जाके लूट लिया आपने, धर्म आ जाके ब्रज ले लिया आपने, यमुना जी में स्नान कर लिया, राधा श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया, गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली, बहुत कुछ ले लिया, अब देने का समय है। आप ये संस्था जो है वो देने के लिए है, नहीं सिर्फ लेने के लिए नहीं है। तो लेकर हमें देना भी होगा, आगे लेकर फिर आगे देना पड़ता है, इसको कहते हैं चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है लेकर आगे देना होता है, बीच में रखना नहीं है, उसको चैरिटी कहते हैं। चैरिटी का मतलब, चैरिटी ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप एक हाथ ले रहे हैं और दूसरे हाथ से दे रहे हैं, बीच में कोई आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको कहते हैं चैरिटी, उसको कहते हैं दान। तो इसलिए प्रभुपाद ने बड़ा संघर्ष किया इन ग्रंथों के प्रकाशन में और खासकर अनुवाद करने में, रात रात बिताए प्रभुपाद ने, 12 बजे करीब प्रभुपाद अनुवाद करना शुरू कर देते थे, और एक बार प्रभुपाद ट्रांसलेशन कर रहे थे इस तरह से रात को, और पूरी रात ट्रांसलेशन करने के बाद प्रभुपाद एक्चुअली उस दिन एक दिन पहले कई भक्तों के साथ ट्रैवलिंग से वापस लौटे थे, और बहुत ही हेक्टिक ट्रैवलिंग शेड्यूल था प्रभुपाद का, और उनके साथ जो शिष्य आए हुए थे वो सब सो गए रात को, क्योंकि प्रभुपाद का ऐसा था कि प्रभुपाद को जेट लैग कभी नहीं होता था। इंटरनेशनल ट्रैवल करने के बाद प्रभुपाद इतने ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में थे कि प्रभुपाद का डेली शेड्यूल सेम होता था पूरे वर्ल्ड वाइड। आप कभी वेस्ट जाके नहीं आए, अमेरिका अगर गए हो, अमेरिका यूरोप से वापस आके देखिए जेट लैग होता है, एक हफ्ता लग जाएगा आपको दोबारा, आप गए होंगे, आपको में से कितने भक्त गए हैं वेस्ट में, तो क्या होता है वापस जब आते हैं, जेट लैग होता है कि नहीं होता है, कई दिनों तक नींद ठीक से नहीं आती, रात को जागते हैं दिन में सोते हैं, मैं राइट। तो इस तरह से हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद के साथ ऐसा कभी नहीं होता था। तो प्रभुपाद का टाइम वही रहता था, शेड्यूल रहता था, रात को 12:30 बजे उठेंगे, श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन शुरू कर देंगे, और सुबह चले जाएंगे 6 बजे करीब मॉर्निंग वॉक में। ये डेली शेड्यूल होता था वर्ल्ड वाइड, 365 दिन सेम शेड्यूल। और प्रभुपाद 70+ थे, 70 से नीचे नहीं थे, 70 साल की उम्र की बात की बात बता रहे हैं। तो रात को जब वापस आए, लेट आए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग करके, तो शिष्य लोग तो सो गए, और सुबह प्रभुपाद पूरी रात ट्रांसलेट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, और सुबह उठे लगभग 4 बजे, और प्रभुपाद ने देखा, 4 बजे उठे मतलब 4 बजे करीब जाके देखा प्रभुपाद ने ये भक्त लोग क्या कर रहे हैं, और वहां सारे भक्त सोए पड़े थे। तो प्रभुपाद के साथ ट्रैवलिंग बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि प्रभुपाद का शेड्यूल इतना हैवी होता था ट्रैवलिंग का, और किसी भी जगह पे 2-3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं थे, और वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग कर रहे थे, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होता था प्रभुपाद का, और ये लोग साथ में ट्रैवल कर रहे होते थे तो इनकी तो हालत खराब हुई हुई थी, और इतना हेक्टिक था। और वो जब प्रभुपाद ने उठाए तो उठे नहीं, प्रभुपाल ने कहा यू पीपल आर स्लीपिंग, यू आर वर्स देन कर्मीज, प्रभुपाल ने इस तरह से डांट दिए थे। वो बेचारे थके हुए थे, उनकी हालत खराब देती, उन्होंने कहा कि प्रभुपाल वी आर टायर्ड, दिस ट्रैवलिंग वाज सो हेक्टिक। प्रभुपाल ने कहा आई एम आल्सो टायर्ड, आई ऑल्सो ट्रेवल्ड विथ यू. फिर उन्होंने कहा कि प्रभुपाल बट यू आर अ प्योर डिवोटी प्रभुपाल, वी आर नॉट प्योर डिवोटीज, यू आर अ प्योर डिवोटी. प्रभुपाल ने कहा वाई यू आर नॉट प्योर डिवोटी. तो इस तरह से प्रभुपाल जो है एंगेज करते थे डिसाइपल्स को. और इन दिनों प्रभुपाल अमेरिका में लॉस एंजलिस टेम्पल में उस समय 17 संकीर्तन पार्टी हुआ करती थी. एक संकीर्तन पार्टी डेडिकेटेड थी लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के लिए और 17 संकीर्तन पार्टी अमेरिका के अलग अलग कोने में जाते थे, अलग अलग गांव में, अलग अलग कंट्री साइड में, अलग अलग सिटीज में लोग जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे. और लगभग 200 से अधिक ब्रह्मचारी से लॉस एंजलिस टेम्पल में उस समय सुभाष प्रभु आए थे. यहाँ पे भी लॉस एंजलिस टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं जो कि इस्कॉन के सबसे पुराने प्रेसिडेंट है, मतलब लॉन्गेस्ट एग्जिस्टिंग टेम्पल प्रेसिडेंट है सुभाष प्रभु, जो पिछले 36 साल से एलए टेम्पल के प्रेसिडेंट है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है देखा जाए तो. और ये 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है. उससे पहले वो डेनवर टेम्पल के भी 4 साल प्रेसिडेंट है, यानी कि 40 ईयर्स लॉन्गेस्ट एग्जिस्टिंग टेम्पल प्रेसिडेंट, कंटिन्यूसली 40 साल से टेम्पल प्रेसिडेंट है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तो क्या बताए. तो वो बता रहे थे कि उस समय 200 से अधिक ब्रह्मचारी थे और उनका क्या शेड्यूल होता था मैराथन के टाइम में, सुबह 7:30 बजे निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट, सब रस्ते में ही मॉर्निंग क्लास हो जाएगा 6:30 बजे भागवतम क्लास, और मंगल आरती से पहले ये सब लोग 16 माला कर लेते थे. अमेरिकन वैसे भी बहुत स्ट्रांग होते हैं फिजिकली भी. तो और 7:30 बजे वो निकल जाएंगे और एयरपोर्ट्स में जो जाते थे 7:30 बजे पहुंच के उससे निकल के ब्रेकफास्ट रस्ते में करके और रात को वापस आते थे 10:30-11 बजे. यानी कि समझ लीजिए नॉन स्टॉप उनका होता था 15 से 16 घंटे डेली बुक मैराथन के टाइम में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, ये टाइमिंग्स होते थे. तब लगता था मैराथन हो रहा है, तब लगता था ये मैराथन है. अगर इस तरह का मैराथन होगा तब लगेगा कि ये वास्तव में कुछ अलग ही कर रहे हैं पूरे साल से. लेकिन उस तरह का फिर उत्साह आना चाहिए, उस तरह की एनर्जी होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है. तो ये स्प्रिट हुआ करता था और लॉस एंजलिस एयरपोर्ट में ये लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे. तो एक भाग जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो फिर क्या हुआ, एक सिक्योरिटी वाले ने पकड़ लिया. तो सिक्योरिटी वाले ने पकड़ा तो उसने कहा कि क्या कर रहे हो आप लोग, ये सब क्यों लोगों का यहाँ पर तंग कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो बुक्स के लिए. तो उन्होंने कहा कि हम तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप देखिए ना, आप भी पढ़ के देखिए ना किताब. तो सिक्योरिटी वाले को बुक दे दी ईशोपनिषद. तो उसने वो बुक पढ़ी और वो इतना कन्विंस हो गया तो उसने कहा कि ठीक है आपको कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना फिर आप. अगले दिन से उसने ओपन परमिशन दिया था. खैर एलए एयरपोर्ट में तो खैर आजकल बैन हो गया है अमेरिका में, पहले लॉस एंजलिस एयरपोर्ट में आप नहीं कर सकते, पहले होता था और कई सालों तक वहां चला था. तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रभुपाद जी का हार्ट था, प्रभुपाद जी का हृदय था. ये आपको एक घटना बताते हैं अफ्रीका की. अफ्रीका के जीबीसी हैं श्रीवास प्रभु, सुना होगा आपने नाम, जो कि भक्ति वैभव भी पढ़ाते हैं मायापुर में. और ये असली घटना है, अफ्रीका की घटना है. ऐसा नहीं है कि यमदूत जो है केवल इंडिया में आते हैं, यमदूत अमेरिका में भी जाते हैं और अफ्रीका में भी जाते हैं. इंटरनेशनली ट्रैवल करना पड़ता है लोगों को उठाने के लिए. यमदूत भी इंटरनेशनल प्रीचर्स हैं, यमराज जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अफ्रीका की घटना है, कहानी बताते हैं. एक अफ्रीकन व्यक्ति था और वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था. वो शायद उनकी कंपनी में कुछ प्रमोशन वगैरह हुआ था. तो फिर उस दिन रात को पार्टी थी और ये बहुत ड्रिंक करते थे और वहां जाके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया. जब बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया तो फिर वो ड्रिंक करते करते क्या हुआ, बेहोशी हो गए. उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और हॉस्पिटल लेके गए और कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद उनको फिर डिस्चार्ज किया गया और वापस आ गए. फिर वो घर आ गए टेम्पल कह रहा हूँ, तो अपने घर वापस आ गए. और रात को 11:30-11 बजे के बाद उन्होंने कुछ देखा. उन्होंने 3 लोगों को देखा और वो बड़े भयानक थे और बड़ा ही कुरूप शरीर था उनका. बाल उनके खड़े हुए थे, आंखें उनकी लाल थी, शरीर बिल्कुल काला था, शरीर से दुर्गंध आ रही थी और चेहरा भी उनका टेढ़ा मेढ़ा था और बड़े भयानक लग रहे थे. और वो इस तरह से इशारा कर रहे थे कि चलो चलो हमारे साथ करके. तो वो दृश्य देखकर जो है वो इतने डर गए और इतना डरा हुआ व्यक्ति कि घर छोड़कर वो स्ट्रीट में भागे, सड़क पर भागे. और वहां तो वेस्ट में तो ऐसा है कि अफ्रीका वगैरह में तो लोग रात को भी घूमते रहते हैं. तो देखा कि क्या हुआ, क्या हुआ, आप भाग क्यों रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैंने बड़े भयानक लोग देखे मैंने अभी, उनको लगा कोई सपना देखा है उन्होंने. और वो फिर वापस आ गए समारोदर, उनको फिर और किसी के घर में जाके फिर रहे वो किसी और के साथ. तो फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन उसी एरिया से वहां पे एक हरिनाम निकल रहा था और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे थे भक्त लोग. तो एक भक्त ने अप्रोच किया इनको कि आप प्लीज लीजिए लीजिए, हम सबको दे रहे हैं, बुक्स हैं बहुत अच्छी हैं, गीता है, भागवतम है, ये है वो है. तो उन्होंने कहा ये क्या बुक है, उन्होंने कहा ये श्रीमद् भागवतम है, भागवतम का 6ठा स्कंद है. तो किताब उन्होंने खोल के देखी, बहुत बढ़िया लगी उनको किताब, किताब के बैक साइड पर देखा और देख के एकदम से डर गए। वो उनका हाथ कांपने लगा, वो बुक नीचे छोड़ देते, उनका हाथ जब कांपने लगा तो क्या हुआ, आप ये चित्र देख के डर क्यों गए इतना? उन्होंने कहा कल रात को इन्हीं के तो मेरे को दर्शन हुए। ये पेंटिंग कैसे आपने बना ली, क्या आपके यहां रहते हैं क्या, आपने इनको भेजा था? देखिए हमारे पेंटिंग्स इतने एक्यूरेट हैं जो कि शास्त्रों के ऊपर बेस्ड हैं। वो पेंटिंग जब देखा तो उन्होंने कहा एज इट इज, बिल्कुल यही हु बहु यही लोग थे, ऐसे ही लग रहे थे वो देखने में। तो उन्होंने कहा ये आप लोगों के पास कहां से आ गए? तो उन्होंने कहा कि वास्तव में श्रीमद भागवतम है और ये इसमें एक प्रसंग है अजामिल की कथा, उसमें इन यमदूतों का वर्णन आता है। तो उन्होंने कहा कि इनको तो मैंने देखा था कल रात को, इनसे कैसे बचूं, और फिर आ गए तो दोबारा? तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, ये श्रीमद भागवतम पढ़िए, खासकर अजामिल का प्रसंग पढ़िए, यमदूत आपको कभी सपने में भी दर्शन नहीं देंगे, कभी नहीं आएंगे आपके पास। तो उन्होंने जो है फिर वो भागवतम खरीदी और श्रीमद भागवतम का सबसे पहले उन्होंने 6 कैंटो पढ़ा। 6 कैंटो पढ़कर वो भक्त बन गए और अभी अफ्रीका के GBC हैं वो श्रीवास प्रभु, और हर साल आते हैं, भक्ति वैभव पढ़ाते हैं मायापुर में। ये असली इंसिडेंट है। तो ये देखिए प्रभुपाद जी की किताबों का चमत्कार है। हम ऐसा ना सोचे कि हम लोग प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं इससे क्या फायदा है, और इसमें तो बहुत बेसिक चीजें दी हैं। प्रभुपाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही बोलते रहते हैं और उसी बात को रिपीट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रभुपाद जी की इस बेसिक फिलॉसफी से ही पूरे विश्वभर में जो है भक्त बने हैं, राइट? ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं लेकिन उनके माध्यम से भक्त कितने बने हैं। और प्रभुपाद ने इतने आपके लेक्चर से कि प्रभुपाद जी के श्रीमद भागवतम का कोई भी श्लोक हो प्रभुपाद घुमा फिरा के वहीं आ जाते हैं, बॉडी एंड सोल। अभी चेतन चरितामृत के आपने श्लोक सुना था और परपोर्ट में भी प्रभुपाद वही बात कर रहे हैं आत्मा और शरीर की। तो प्रभुपाद का देखिए कहीं ना कहीं प्रभुपाद वहीं पे आ जाते हैं आत्मा और शरीर को लेके। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं कि ये बेसिक नहीं है, क्योंकि जब तक आप रियलाइज नहीं कर लेते हैं कि शरीर नहीं आत्मा है तो वास्तव में भक्ति शुरू ही नहीं होती। भक्ति का वास्तव में शुरुआभारम जो है, यानी कि जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेशु भूक्तेषु मद भक्ति लभते परां। तो पराभक्ति कहां से शुरू होती है? जब हम परब्रह्म भूत अवस्था में होते हैं, जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि हमें शरीर नहीं आत्मा है। तो ये बेसिक बात नहीं है, ये बहुत ही एडवांस लेवल है, राइट? और कई जगह तो प्रभुपाद कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी का मतलब है जो जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, मध्यम अधिकारी कौन है जिसे परमात्मा का साक्षात कर लिया है, और उत्तम अधिकारी कौन है जिसने भगवत साक्षात्कार कर लिया है। तो हम कौन से स्टेज में, हम खुद ही सोचें फिर, अगर ब्रह्म साक्षात्कार भी नहीं किया हमने। तो इस कारण से प्रॉपर रिपीट करते हैं, जैसे कि बच्चे को 2+2=4 तब तक पढ़ाया जाएगा तब तक वो पूरी तरह से सीख नहीं लगता है। उसको कैलकुलस पढ़ाने का क्या फायदा अगर वो बेसिक मैथमेटिक्स ही नहीं समझ पाया? तो इसलिए प्रॉपर बार बार रिपीट करते हैं जितना कि हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद की इस बुक से जो है पूरे विश्व में, एक घटना आपको बताते हैं, दिल्ली की घटना बताते हैं, हम तो विदेशों की बात करते हैं लेकिन भारत में बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, और एक घटना आपको बताते हैं बहुत पुरानी घटना है। ये होगी 85 की घटना होगी। एक व्यक्ति था, वो ग्रेटर ग्लास टेम्पल गया, और ग्रेटर ग्लास टेम्पल में वो गया क्यों था? विदेशी लोगों को देखने के लिए, फॉरनर्स को देखने के लिए। एक अट्रैक्शन होता है ना, इंडियंस देखना चाहते हैं अमेरिकन कैसे लगते हैं, यूरोपियंस कैसे लगते हैं। तो वो गलती से था, लेकिन बुक मैराथन का टाइम दिसंबर के समय, और राधा पारसारथी का दर्शन किया उन्होंने, वहां किसी भक्त ने जबरदस्ती उनको किताब पकड़ा दी, ले लो करके, और वो उन्होंने फिर खरीद ली, ठीक है दे दो यार, 10 रुपए की किताब ले ली, और फिर वो चले गए वापस और अपने बिजनेस अपने फैक्ट्री में गए। और फैक्ट्री में उन्होंने क्या किया, अपने रैक में उनके बैटरी का बिजनेस, ट्रक की बैटरीज वगैरह बनाया करते थे वो, उस रैक में उन्होंने जो उस किताब को रख दिया और रखा ही रखा काफी सालों तक, उसको छुआ भी नहीं देखा भी नहीं। और उनकी आदत थी रोज वो ड्रिंक करके आते थे रात को, घर वाले बहुत परेशान थे, रात को आते थे झगड़ा करते थे और ड्रिंक करते थे खूब, और ड्रिंक करके ही घर आया करते थे। तो एक बार हुआ क्या, फिर जब उनका बिजनेस में काफी लॉस होने लगा तो उन्होंने कहा कि अब तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा, और फैक्ट्री में गए, वो सामान वामान सब उनको ऑक्शन करना था या सामान सारा बेचना था जो बचा कुचा सामान था। तो उन्होंने फिर जो है बहुत हताश थे वो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, और उन्होंने बुक रैक में वो किताब देखी जो उन्होंने खरीदी थी कई सालों पहले, और किताब को लेके खोल के देखा, प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब, एनी टाइम इट कैन एक्सप्लोड। तो ये जब लाइन पढ़ा उन्होंने, उनका तो एकदम से हृदय जैसे विदीर्ण सा हो गया हो और चकाचौंध हो गया। उन्होंने कहा कि क्या बात लिखी है उन्होंने, भाई टाइम बॉम्ब कैसे हो सकते हैं किताब ही। तो उस किताब को उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनका पूरा जीवन बदल गया। आप हैरान हो जाएंगे कि प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने से ही कई लोग भक्त बन गए, कोई उनको काउंसलर नहीं मिला, कोई मेंटर नहीं मिला, कोई प्रीचर नहीं मिला, कोई भक्त नहीं मिला, जस्ट पढ़ने से ही लोगों ने जो है माला शुरू कर दी। स्वीडन के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया था कि उन्होंने ईशोपनिषद मिला था किसी भक्त से, और ईशोपनिषद या कोई बता रहे थे कौन सी किताब थी, वो किताब उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि घर में मैंने 16 माला भी शुरू कर दी है, 16 माला भी शुरू कर दी थी और 4 नियमों का पालन करना भी शुरू कर दिया। और स्वीडिश व्यक्ति है, इंडियन भी नहीं है, फॉरनर था वो। तो इस तरह से कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के लोग भक्त बन जाते हैं, नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ये कमाल है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड किया जाए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की मात्रा को बढ़ाया जाए, ग्रंथों के वितरण को बढ़ाया जाए। लॉस एंजलिस टेम्पल में किसी भक्त ने पूछा था प्रभुपाद से कि हाउ वी कैन इंक्रीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद का विदाउट इंटरप्शन सिटिंग इन वन प्लेस चैंट 16 राउंड विदाउट इंटरप्शन, एक जगह बैठ के ध्यान पूर्वक आप 16 माला का जप करो बिना किसी रुकावट के, आपकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी एक जगह बैठकर। बोले ऐसे कैसे कनेक्शन हो सकता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का चैंटिंग से, क्योंकि सारी एनर्जी जो है हमारी कहां से आती है, इस चैंटिंग से आती है, साधना से आती है। प्रातः काल जब भगवान का दर्शन आप करते हैं ब्राह्म मुहूर्त में राधिका रमन जी का, या अगर मंदिर में अगर आपके घर पे है तो ब्राह्म मुहूर्त का अगर आप दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करेंगे तो जानते क्या होता है, आपके अंदर एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करती है। जैसे कृष्ण सर्वाकर्षक है, जब श्रवण कीर्तन में भक्त लगता है और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का दर्शन करता है तो जानता क्या होता है, ऐसे भक्त भी जो है आकर्षक हो जाते हैं। और ऐसे भक्त जब उस ऊर्जा के साथ, उस एनर्जी के साथ बाहर जाते हैं ग्रंथों का वितरण करने के लिए, तब देखिए क्या चमत्कार होता है। लेकिन आप अगर आप जाएंगे 9 बजे उठ के जाएंगे, चेहरा आपका मुरझाया होगा और खुद ही आप हताश हैं, तो लोगों को भी हताश करेंगे और लोग आपके पास नहीं आना चाहेंगे, बोलेंगे ये उदास है, ये शायद अभी इसके घर में कोई शोक सभा बनाई गई है और घर की ही कॉपी बेचने के लिए ये बाहर सड़क पर निकला है। घर में शायद झगड़ा हुआ था और झगड़ा का कारण क्या था, क्योंकि गीता महाभारत का एक भाग है, इसी वजह से जो है वो गीता बेचने बाहर निकला है। लोग आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि आप खुश नहीं है, आपके चेहरे में जो है रौनक नहीं है, आपके चेहरे में मुस्कान नहीं है, आपके चेहरे में जो है कृष्ण भावना कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा, कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा, कोई एनर्जी नहीं फ्लो कर रही है और बिल्कुल सड़े हुए टमाटर की तरह आपका चेहरा है और आप ग्रंथ बांटने निकले हो भगवत गीता, वो भी क्या उम्मीद कर रहे हो, लोग आपसे खरीदेंगे? कोई नहीं खरीदेगा आपसे, क्योंकि आप खुद भी ड्राई हो और लोगों को भी ड्राई करने जा रहे हो। सूखा व्यक्ति संसार को सुखा देता है, और जब तक आप गीले नहीं होंगे कृष्ण भावना से, किसी को गीला नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को पहले हमें सरचार्ज करना पड़ेगा। बैटरी आपके पास मोबाइल फोन है, बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको अगर चार्ज नहीं करेंगे तो उस मोबाइल का क्या वैल्यू है, इट्स यूजलेस। नहीं भले वो एप्पल का हो या फिर ओप्पो का हो या फिर किसी का भी हो, अगर उसको चार्ज नहीं करेंगे तो वो फोन एक डब्बा है, तो उसको चार्ज करना पड़ता है, एनर्जी हैज टू फ्लो। इसी तरह से हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस अपने आप को चार्ज करना है, उस बैटरी को चार्ज करना है, एनर्जाइज करना है अपने आप को, तभी आपको लोग सुनेंगे और लोग आपसे खरीदेंगे। कोई मटेरियल टेक्निक, कोई सेल्स टेक्निक जो है यहां पर नहीं इफेक्टिव होगी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, जब तक हम लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे। इसलिए फाउंडेशन है हमारी साधना, ग्रंथों का अध्ययन। तो इसलिए किसी ने उस दिन कहा था हमसे कि प्रभु जी महाभारत का एक भाग है भगवत गीता, तो घर में महाभारत रखने से तो झगड़ा हो जाता है। हमने कहा महाभारत नहीं रखेंगे तब झगड़ा होगा, क्योंकि महाभारत नहीं रखेंगे महाभारत अगर नहीं रखेंगे तो आपके घर में झगड़ा होगा, क्योंकि अगर महाभारत हमने नहीं रखा तो जानते क्या होगा, आपके घर में थोड़े बहुत जो पांडव बच्चे हैं वो भी कौरव बन जाएंगे और कौरवों की संख्या बढ़ जाएगी, आपके घर में सब दुर्योधन बन जाएंगे, एक भी अर्जुन नहीं बनेगा, और आने वाली पीढ़ी जितनी होगी वो दुर्योधन के ही अनुयायी होंगे, और दुर्योधन तो कली का स्वरूप है। लेकिन अगर आपके घर में महाभारत होगी जिसमें भगवत गीता है तो जानते क्या होगा, पांडवों की विजय होगी और के संपर्क में जो भी आएंगे वो सब पांडव सेना में ज्वाइन करेंगे, और सारथी कौन होंगे, उनके सारथी होंगे भगवान श्री कृष्ण। तो महाभारत घर में रखने से झगड़ा नहीं होता है, महाभारत ना रखने से घर में झगड़ा होता है। और कुछ लोगों का कहना है कि प्रभु जी हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम कहां से प्रचार कर सकते हैं, तो किसने मना किया आपको ज्ञान लेने के लिए, आपके पास 11 महीने थे, उस समय क्या किया आपने, क्यों नहीं ग्रंथ खोला आपने, क्यों नहीं पढ़ा आपने, गलती हमारी है आपकी, पूरे साल पढ़ो और एक महीना नहीं बांट सकते फिर गीता का, तो नहीं कर सकते। अभी याद आ रहा है आपको कि ज्ञान नहीं है, नहीं एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आप बोलेंगे मेरे पास ज्ञान नहीं, मैं कैसे एग्जाम दे सकता हूं, नहीं तो कब तक स्कूल जो है आपको टॉलरेट करेगा? तो इसलिए क्या है, हमें जो है बुद्धू ना बनना है ना बुद्धू दूसरों को बनाना है। भगवान गीता में क्या करे, बड़ा देखिए पावरफुल पॉइंट है, प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विरुण आत्मा करता हम इति मन्यत। भगवान कहते हैं जो अपने आप को कर्ता मानते हैं वो महामूर्ख है। लेकिन हम एक और बात जोड़ रहे हैं इसमें, जो कर्ता नहीं मानते और करते नहीं है वो भी महामूर्ख है। जो अपने को कर्ता नहीं मानते और करते नहीं है वो भी महामूर्ख है, क्योंकि वास्तव में अपने आप को कर्ता समझते वह नहीं कर रहे हैं। समझे कि नहीं? क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, यह भी कर्ता की भावना है। क्योंकि जो व्यक्ति यह समझता है कि मैं कर्ता नहीं हूं, कृष्ण ही करता है, तो वो करेगा कुछ, वो कुछ करके दिखाएगा, वो करने का प्रयास करेगा कम से कम। और जो ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूं और इस कारण से वो नहीं कर रहा है, तो वो कभी नहीं करेगा और कभी कुछ कर नहीं पाएगा। समझ रहे बात को? तो इसलिए मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया नहीं। आप कभी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा कर्ता की भावना है। आप महामूर्ख हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप कर रहे हो। ब्रह्मा जी को नहीं पता था कि उनको सृष्टि की रचना करनी होगी। सृष्टि के प्रारंभ में वो तो अंधकार में बैठे हुए थे, कमल के ऊपर चारों तरफ अंधकार था। उनको ये दिमाग में कहीं बुद्धि में नहीं आ रही थी बात कि उनको सृष्टि की रचना करनी है, राइट? आप श्रीमद् भागवत पढ़ के देखिए, ब्रह्मा जी सोच रहे मेरे को क्रिएशन करना है, चलो मैं कृष्ण से पूछ लू। लेकिन उनको आज्ञा मिली थी, भगवान से आज्ञा मिली थी, सृष्टि करने की शक्ति भगवान से प्राप्त हुई थी, वो कृपा शक्ति प्राप्त हुई थी। तो एक जीव जब पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकता है तो हम क्यों ग्रंथों का वितरण नहीं कर सकते, बताइए? जब आपके पास प्रभुपाद की कृपा शक्ति है, गुरु की वैष्णव की कृपा शक्ति है, हमें केवल एक कदम आगे बढ़ाना है। एक कदम आगे बढ़ा के देखिए, फिर देखिए चमत्कार। जैसे प्रभुपाद कहते हैं यशोदा माता कृष्ण की माता क्यों है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए चिंता को खरीद लिया है। तो चिंता को खरीदने का एक तरीका बताएं आपको, बहुत आसान तरीका, प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आपको। आज ही आप प्रभु जी से जो है सारे कार्टन्स ले लो, एक कार्टन में 32 गीता होती है, भरपूर मात्रा में, एक दो कार्टन नहीं, कितने कार्टन जितने से आपका कमरा भर जाए। और कमरा इतना भरना चाहिए आपका कि केवल आपके लिए 6 फुट जगह या 5 फुट जगह होनी चाहिए सोने के लिए। आप लेट कर देखिए और उन ग्रंथों के बीच में लेट कर देखिए, देखिए कितने अच्छे से नींद आती है आपको। नहीं आएगी नींद, क्योंकि आप देखेंगे चारों तरफ मेरे किताबें किताबें, बांटेगा कौन इसको? आप चिंता से भर जाओगे। एंग्जाइटी डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है, राइट? हम आपको बता रहे क्योंकि हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे हैं आपको, ये भी थ्योरेटिकल बातें नहीं है, हम एक्सपीरियंस से सारी बात कर रहे हैं। पहली बार जब हमारा बुक मैराथन हुआ था 2005 में, जब बड़े स्केल में किया था इंटरनेशनल लेवल पर हमने, तो उस समय हमने रिस्क लिया था। रिस्क लिए बगैर कोई काम होता नहीं संसार में। अगर बिजनेस भी करना है, जितने बिजनेसमैन यहां बैठे हैं वो जानते हैं कि करोड़ों रुपए लगाते हैं वो बहुत बड़ा रिस्क होता है बैंक से लोन लेकर। ऐसे कई लोग जो हैं बिजनेसमैन तिहार जेल में बैठे हुए हैं, जानते हैं आप, 25,000 करोड़ 35,000 करोड़ का घोटाला किया है, बैंकरप्ट हुए पड़े हैं, वो सब उनको उठा के अंदर डाला हुआ तिहार जेल में। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया बहुत बड़ा। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बिजनेसमैन रिस्क लिया और इंडिया के सबसे अमीर आदमियों में से माना जाता है उनको। तो रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहेगा बड़ा काम करने से। कोई भी बड़ा काम करेंगे तो उसमें खतरा रहेगा। ऐसा नहीं, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर दिए हैं और उसमें कोई रिस्क नहीं लिया आपने। ऐसा कोई काम नहीं आज तक हुआ। कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क क्या है आपको बड़ा सोचना होगा। जैसे कि प्रभुपाद जब फ्रांस में गए, एक चर्च में गए, एक झूमर लटक रहा था इसी तरह से, और वो झूमर जो है कम से कम 2 टन से ज्यादा का होगा वेट उसका। तो प्रभुपाल ने कहा इन मायापुर वी आर बिल्डिंग दिस वेदी प्लानिटोरियम। उसमें कुछ नहीं था, मायापुर में जंगल था। प्रभुपाल ने कहा वी आर बिल्डिंग वेदी प्लानिटोरियम, टेम्पल ऑफ वेदी प्लानिटोरियम, देयर वी आर गोइंग टू हैव द प्लानिटरी सिस्टम एंड दैट प्लानिटरी सिस्टम शुड बी हैंगिंग लाइक अ शैंडेलियर। प्रभुपाल ने कहा वहां सौर मंडल हम दिखाएंगे कि झूमर की तरह लटकना चाहिए, क्योंकि पोल स्टार के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूमते हैं अकॉर्डिंग टू भागवतम। तो वो क्या है, एक झूमर की तरह लटकता है। प्रभुपाल श्रीमद भागवतम में भी लिखा है ऐसे। तो प्रभुपाद ने देखा ऐसे, कि वो उसका वजन जो है इतना ही होना चाहिए, कम से कम 2 टन। प्रभुपाद ये सब बातें बोल रहे हैं और मायापुर में कुछ भी नहीं है। और वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं इन मायापुर आवर टेम्पल शुड लुक लाइक दिस व्हाइट हाउस, और वहां मायापुर में कुछ भी नहीं है, कैसे बनेगा कुछ पता नहीं। और आज आप देखिए व्हाइट हाउस के डिजाइन में बनाया गया मायापुर टेम्पल, उससे भी बढ़िया बना है। तो ये प्रभुपाद की सोच हुआ करती थी। प्रभुपाद जब सोचते थे तो बहुत बड़ा सोचते थे, और सोचते ही नहीं थे केवल, प्रभुपाद उसको एग्जीक्यूट भी करते थे और करवाते भी थे। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो बड़ा सोचने का प्रयास करें। रिस्क हमारे जीवन में जरूर आना चाहिए। जब तक हम चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे हमारा कृष्णा कॉन्शियस डेवलप नहीं होगा। हमने कई बार बताया है आपको कृष्णा कॉन्शियस कब डेवलप होता है। कुकर का एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया था कुकर का हमने? हमने बताया था कि चावल कहां पकता है? प्रेशर कुकर में। तो जब तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होगा कृष्णा कॉन्शियस डेवलप होगा ही नहीं, हम भी नहीं पकेंगे, राइट? हम भी नहीं पकेंगे जब तक प्रेशर नहीं होगा। कई तरह के प्रेशर है, बॉस का प्रेशर है, बिजनेस का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, नहीं पत्नियों का, बच्चों का, माताओं का, रिश्तेदारों का, सबका प्रेशर रहता है। सब खींच रहे हैं आपको दसों दिशाओं में, नहीं आप भी दिग्विजय हैं। दिग्विजय किस तरह से आपको दसों दिशाओं में खींचा जा रहा है, इस तरह से दिग्विजय हैं आप। आपकी सारी इंद्रियां, 10 इंद्रियां जो है 10 दिशाओं में खींच रही है, इस तरह से आप दिग्विजय हो गए। तो ये सारा प्रेशर आपके ऊपर है। और एक प्रेशर कब होता है? जब राधिका रमण जी के मंदिर में आते हैं और यहां भक्तों से प्रेशर आपके ऊपर डलता है कि बांटो बुक्स बांटो। आप 1000 गीता बांटेंगे, 2000 बांटेंगे, आपका प्लेजिंग 5000 का है, हम बताएंगे आप कितना कर सकते हैं, आप कितनी क्षमता है हम जानते हैं, आप नहीं जानते हमें क्या क्षमता है। आप सोच रहे 100 गीता बांट सकते हैं, हमारे हिसाब से आप 1000 बांट सकते हैं। आपका प्लेज है 1000 गीता का, लिखिए जी इनका नाम जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, ये 1000 गीता बांटेंगे अगले 2 महीने। तालियां बजाइए इनके लिए। आप बोलेंगे नामुमकिन है प्रभु जी, ये नामुमकिन है। हाँ, आपके लिए नामुमकिन है क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आप करता हो। ये करता की भावना छोड़ दो, 1000 गीता आराम से कर लोगे आप। तो हमारे लिए सब कुछ संभव है, कृष्ण की बस कृपा होनी चाहिए। अरे ठाकुर जी के लिए क्या असंभव है बताइए। अर्जुन के साथ बैठे हुए हैं, कृष्ण बोल रहे हैं बस मैं तो सारथी बनूंगा, वही काफी है। अगर आप सारथी बन जाए तो वही काफी है, और कुछ चाहिए नहीं हमें। नहीं, वो घटना जानते हैं आप, महाभारत की एक घटना बताते हैं आप। तो क्या हुआ कि अर्जुन ने कहा महाभारत के युद्ध के बाद, कृष्ण एक बात बताओ, मैं कैसे समझूं कि महाभारत के युद्ध में सब कुछ आप ही कर रहे थे, हर कदम में जो है आपने ही सब कुछ किया, मैंने तो केवल आपको देखा कि आप रथ चला रहे हैं और सारथी बने हुए हैं, मैं कैसे मालूम कि आपने सब कुछ किया। हरिवंश पुराण में भी एक घटना आती है जहां पे बताते हैं भगवान कि कैसे कैसे मैंने तुम्हारी सहायता की थी। तो अर्जुन तुम देखना चाहते हो, तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम रथ से नीचे उतर जाओ। और कहा नहीं नहीं, आप पहले उतरिए। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं तुम पहले उतरो। तो अर्जुन रथ से नीचे उतर गए और उसके बाद फिर वो देखो पताका की तरफ, अब हनुमान जी यहां से जाने वाले हैं। हनुमान जी चले गए और अर्जुन भी रथ से नीचे उतर गए और कृष्ण रथ पे खड़े। तो कृष्ण ने कहा अब मैं रथ से नीचे उतरता हूं। और कृष्ण जैसे रथ से नीचे उतरे तो जानते कि रथ में विस्फोट हो गया एकदम से। तुम क्या सोच रहे हो, भीष्म पितामह ने जो बाण चलाए, द्रोणाचार्य ने जो बाण चलाए, वो कोई साधारण बाण थे? जो इस रथ के साथ हुआ तुम्हारे साथ भी हो सकता था। हर कदम में, हर पल तुम, मैंने तुम्हारी सहायता की है अर्जुन। तुम्हें क्या बनना था? केवल निमित्त मात्र। और जब तुम निमित्त मात्र बनने के लिए तैयार हो गए, सारा कार्य तुम्हारे माध्यम से संपन्न हुआ। और यही बात हम बता रहे हैं आप कि करने वाले तो कृष्ण है, करने वाले तो कृष्ण ही है। कृष्ण ने पहले ही फैसला कर लिया है, यानी कि ये होके रहेगा। और आपके ऊपर है, आप इस श्रेय को लेना चाहते हैं कि नहीं, आप इस जिम्मेदारी को लेना चाहते हैं कि नहीं, दिस इज अप टू यू। बात सही कि नहीं? तो इसलिए प्रभुपाल ने कहा कि मैं वचन देता हूं। प्रभुपाल एक लेटर में लिखा, आई प्रॉमिस यू, अगर आप जीवन भर इन ग्रंथों का वितरण करेंगे तो लॉर्ड चैतन्य विल पर्सनली कम एंड डिलीवर यू। ये फैक्ट है। एक थे प्रभुपाल डिसिपल, निर्गुण प्रभु, बहुत बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे अपने जमाने में। मायापुर में शरीर छोड़ा था, उन्होंने कैंसर हो गया था उनको। और अंतकाल में जानते क्या हुआ, अंतिम समय में क्या हुआ कि वो एक्चुअली प्रैक्टिकली कोमा में थे। इतने बीमार थे कि बस बोल नहीं रहे थे कुछ, उनको ठीक से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। तो अचानक क्या हुआ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और चेहरा उनका खिल गया एकदम से। तो भक्तों ने कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कि उस उतनी पीड़ा उनको हो रही थी, उतने कष्ट में थे, और एकदम से कोई व्यक्ति अगर मुस्कुराने लगे तो लोग सोचेंगे भाई कि मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लॉर्ड चैतन्य हैज कम टू टेक मी। वो भक्त ने क्या बोला, लॉर्ड चैतन्य हैज कम टू टेक मी, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आया मुझे ले जाने के लिए। एक घटना आपको बताते हैं, ये तो भक्त थे, ऐसे व्यक्ति के साथ एक घटना हुई। जर्मन फिलोसोफर थे, बहुत बड़े जर्मन फिलोसोफर थे, पृथ्वी भोग गए थे उनसे मिलने के लिए। प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद एक जर्मन फिलोसोफर है, जर्मनी की बाहर 600 किलोमीटर दूरी के पर रहते हैं, मैं उनको आपकी गीता देना चाहता हूं। प्रभुपाद ने कहा गो हेड। तो पृथ्वी भोग गए उनको गीता देने के लिए, उनकी वाइफ नीचे खड़ी थी घर के नीचे, और जब पहुंचे वहां पे तो वाइफ ने कहा कि वो तो कोमा में है पिछले 6 महीने से, आप मिल भी लोगे तो क्या करोगे, वो बात ही नहीं कर पाएंगे आपसे, ही इज इन कोमा फॉर लास्ट 6 मंथ्स। उन्होंने कहा नहीं नहीं कम से कम मैं उनको देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनको ये बुक गिफ्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने ठीक है आप मिल लीजिए, वो फर्स्ट फ्लोर में है। तो ऊपर गए मिलने के लिए, वो लेटे हुए था, एकदम कोमा में था वो व्यक्ति, और पृथ्वी भोग ने क्या किया जानते हैं, भगवद गीता उनके हाथ पे पकड़ा दी, भगवद गीता उनके हाथ पे पकड़ा दी। और जैसे ही गीता हाथ पे पकड़ाई, हाथ पे ऐसे पकड़ा के मतलब पकड़ा दिया, उनके हाथ पे रख दिया, और जैसे ही हाथ पे रखा जानते हैं चमत्कार क्या हुआ, आप हैरान हो जाएंगे, सच्ची घटना है। उनकी आंखें खुल गई, उस जर्मन फिलोसोफर की जो कि बेसिकली ग्रॉस कर्मी था, वो फिलोसोफर था लेकिन मटेरियल, उसकी आंखें खुल गई, और आंखें खुलते उसने गीता को देखा, उसने कहा दिस इज भगवत गीता, दिस इज भगवत गीता, आई नो दिस बुक, आई नो दिस बुक, और रोने लगा, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे, और कुछ ही दिन के बाद वो शरीर छोड़ दिया। ये असली घटना है, जो व्यक्ति 6 महीने से कोमा में था और वो व्यक्ति अचानक जाग गया प्रभुपाद जी की गीता को छूते ही, और पहचान गया कि ये भगवत गीता है। ये है मिरेकल प्रभुपाद की बुक्स का। अमेरिका की आपको घटना बताते हैं, और वो घटना इस प्रकार से है कि एक लेडी थी, वो गई थी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए, और भक्तों ने कुछ किताबें दी थी, उसमें एक किताब थी ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु का, नारायण का एक चतुर्भुज फोटो है, बहुत सुंदर पेंटिंग है, वो जादरणी माता जी ने बनाया था, वो फ्रंट पेज पे है। तो वो किताब उन्होंने खरीदी और खरीद के लेकर आए घर पे, तो उनके हस्बैंड ने कहा कौन सी किताब लाई हो, क्या है ये पेंटिंग तो बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा पिक्चर बहुत अट्रैक्टिव है, क्या है किताब, पहले मैं पढ़ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ पढ़िए। वो किताब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ने के बाद जानते क्या बोला उन्होंने, बुरा ना मानना, अब मुझे पता चल गया मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, आपका रास्ता अलग है मेरा रास्ता अलग है। आप लोग डरिए मत, घबराइए मत, ठीक है ना, ये सुनकर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं इस्कॉन में, आपका रास्ता अलग है मेरा रास्ता अलग है। और इस तरह से उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया, 8 साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर इंडिया आ गए, और इंडिया में श्रीधाम वृंदावन में रहने लगे, कृष्ण बलराम मंदिर में, और तब से रहने लगे, और वहां उन्होंने कीर्तन पार्टी शुरू कर दिया, और उनका नाम है श्रीपाद इंद्रा प्रभु। असली घटना है। और एक घटना आपको एक और बताते हैं, बहुत सुंदर घटना है, देखिए मिराकल, देखिए प्रभुपाद जी के बुक्स का। तो एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी इसी तरह से, वो बुक्स खरीद के लाई और उसको भगवत गीता, उसने भगवत गीता भी खरीदी, और जब घर आई तो उसके जो फादर थे वो बहुत ही ज्यादा मतलब एथिस्ट टाइप का था व्यक्ति, वो उसने एकदम से गीता देखी, उठा के उसने बाहर फेंक दी बालकनी से। बालकनी से जब भगवत गीता को बाहर फेंका, नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, वो अपने कंपाउंड में बाहर कोर्टयार्ड में बैठा, वो प्रार्थना कर रहा था इस तरह से हाथ फैलाए हुए, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था वो, और नीचे घुटना जमीन पर टिकाया वो प्रार्थना कर रहा था, ऊपर से गीता आके उसके गोद में आके गिरी। उसको क्या लगा कि भाई ठाकुर जी की कृपा हो गई, आकाश से गिरा है, भगवान ने भेजा है गीता, तो उसको लगा यार पढ़ना भी चाहिए, वो गीता पढ़ के भक्त बन गया। और उसके बाद उसने प्रोग्राम किया घर पे, हाउस प्रोग्राम, और उस बिल्डिंग के जितने लोग थे सबको बुलाया, उसमें वो व्यक्ति भी था। तो उसने उस सत्संग के बाद, प्रोग्राम के बाद ये बताया कि मैं कैसे भक्त बना, कि एक दिन मैं बहुत हताश होकर बाहर बैठा हुआ था और ऊपर से जो है गीता आके गिरी, ठाकुर जी ने स्वयं ही गीता मेरे लिए भेजी है, दिस इज अ स्पेशल गीता सेंट बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। क्या बेवकूफ बना रहे उस लोगों को, उसने अलग से आगे बताया उसको, तुम बेवकूफ बना रहे, मैंने गीता फेंक दी ऊपर से। लेकिन उसको बड़ा अच्छा लगा वो सत्संग, और उसका भी हार्ट कन्वर्ट हो गया और वो भी भक्त बन गया, उसकी फैमिली सारे लोग भक्त बन गए, उस बिल्डिंग में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे भक्त बन गए। तो इस तरह से कई सारी घटनाएं होती हैं। और एक ट्रेन की घटना बताते हैं आपको, ट्रेन में जा रहे थे, हमारे भक्त जा रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और तो उसने बोला कि आपकी गीता बड़ी महंगी है, 100 रुपए में बेच रहे हो, उसमें 100 रुपए था उस समय, तो 100 रुपए में बेच रहे हो, गीता प्रेस की तो 50 रुपए की है। और उसने कहा देखो ये श्लोक है, ये अनुवाद, ठीक है, इसके हो गए 50 रुपए, और नीचे क्या दिया है, तात्पर्य, और इसके हो गए 50 रुपए, हो गए ना 100 रुपए। और फिर से बोला कि मुझे तो भगवत गीता चाहिए जिसमें कथाएं हो, हर श्लोक के साथ मैं कथा चाहता हूं, कथा ही तो है ये श्लोक है ये कथा है, ये श्लोक है ये कथा है, बहुत सारी कथाएं हैं, जितने श्लोक है उतनी कथाएं। और इस तरह से बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, तो ये आप सब प्रयास करिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बहुत सारी घटना है, टाइम इतना है नहीं, तो आप सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ग्रंथों का अध्ययन भी करें। प्रभुपाद ने बुक्स पढ़ने के लिए भी बहुत जोर दिया है, ग्रंथों का जितना अध्ययन करेंगे हमें ग्रंथों का महत्व पता चलेगा, ग्रंथों का महत्व पता चलेगा तो फिर हम उसको बांटना भी चाहेंगे, लोगों तक पहुंचाना भी चाहेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और उसमें से मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सिग्नल्स हैं, जहां कहीं भी आप जाना चाहे जा सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मत जाएगा कि वहां पे हमारे रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से बुक शॉप अलॉट हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 16 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। उनके कुछ कंडीशंस हैं कि वहां पे किसी भी पैसेंजर को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते, रास्ता नहीं रोक सकते वहां पे। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को छोड़ के पृथ्वी में कहीं भी जाना चाहे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बड़े स्ट्रिक्ट है, तो हमारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। 3 साल के बाद ये हमें बुक शॉप मिला है, और प्लेटफॉर्म नंबर 16 जहां पे राजधानी आती है अजमेर की गेट साइड से पहला प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे बुक शॉप अलॉट किया गया है। तो बस उसी को छोड़ दीजिए, नई दिल्ली को छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे भक्त थोड़े ज्यादा उत्साहित होते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कोई और बुक शॉप वाला कंप्लेंट कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। अंदर बाहर कहीं नहीं, उसके आसपास कहीं नहीं, मतलब 10 किलोमीटर दूर वहां से, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की, हरे कृष्णा।